जगह तो कल्प वृक्ष है, वहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल है, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है, तो भक्तों का तो वहाँ क्या रोल है सब कुछ?
वहाँ पर भक्त लोग भगवान की निरंतर सेवा करते रहते हैं, कॉन्स्टेंट
सेवा तो लक्ष्मी ही करते हैं।
लक्ष्मी तो एक व्यक्ति है ना, भगवान की अनंत सेवाएं होती है, मालूम है आपको? लक्ष्मी एक सेवा कर रही है। अभी हनुमान जी की कथा बताओ आपको। एक बार ना लक्ष्मण सीता शत्रुघ्न भरत सब लोग बहुत परेशान हो गए, बोले ये हनुमान जी जो है ना सब सेवा कर लेते हैं, हम लोग छोड़ते ही नहीं सेवा, कुछ करना चाहिए अभी अपने लिए, आप तो अपना सेवा ही खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने ना प्रभु रामचंद्र का ना सारा सेवा लिख दिया था, क्या क्या सेवा करते हैं, क्या हो सकती है, सोच सोच के सेवा बनाया, पूरा लिस्ट बनाया पूरा, और सबने बांट लिया, सीता लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत ये सब लोगों ने सब सेवा बांट लिया राम जी का, एक भी सेवा नहीं बचा। और अभी हनुमान आए तो वो सेवा करने गए तो ये वो कर रहे हैं, ये करने गए तो वो कर रहे हैं, वो करने तो वो कर रहे हैं, कुछ बचा ही नहीं सेवा। तो हनुमान जी बोला ठीक है कोई बात नहीं, एक सेवा आपने किसी ने लिया नहीं वो मैं करूँगा, कि जब प्रभु राम को जमाई आएगी ना तो मैं छुट्टी बजाऊंगा। तो अभी जमाई किधर भी आ सकती है, तो प्रभु के सामने बैठा है, वो दरबार में बैठा है, बेडरूम में बैठा है, भोजन करते समय बैठा है, कक्ष में बैठा है, जो चर्चा हो रही है, जो मीटिंग हो रही है, जहाँ हो रही है, सब जगह पर ऐसा रेडी है वो करने के लिए। तब ये सब लोगों ने हाथ जोड़ लिया कि भाई आप ही सबसे महान भक्त हो, सेवक आप ही हो, हमने आपको सेवा से वंचित करने का प्रयास किया लेकिन आपको सेवा से वंचित कोई नहीं कर सकता, जिसको सेवा करनी है उसके लिए सेवा की कमी है क्या? लक्ष्मी एक सेवा कर रही है, कोई ऐसा नहीं कि लक्ष्मी कम सेवा कर रही है, लक्ष्मी बहुत बड़ी सेवा कर रही है, लेकिन इसका मतलब यह ना था कि बाकी किसी को सेवा नहीं है। यहाँ आपको जितनी सेवा का चांस है ना भगवान का, उससे अनंत गुना चांस गोलोक में होता है। हमारी यहाँ की सेवा तो बहुत लिमिटेड होती है, फेस्टिवल में क्या होता है, एक 1500 किलो का फूल बिनना है और 1500 ऑफरिंग देना है, उसके आगे क्या होता है, थोड़ा डेकोरेशन करना है, लाइट लगानी है, कीर्तन करना है। लेकिन आप अगर आनंद वृंदावन जम्मू पड़ेगा ना, उसके अंदर कोई भी अध्याय निकाल के आप पढ़िए, और जो व्यवस्था है ना फेस्टिवल की वृंदा देवी के द्वारा उसको पढ़िए आप, कितनी विस्तार में व्यवस्था होती है, इतनी विस्तार में कि हम सोच भी सकते नहीं। ऐसा वन होना चाहिए जो केवल पीले फूलों से भरा होना चाहिए, ऐसे वन में आज लीला करनी है। व्यंजन भी पीले रंग के होने चाहिए, वस्त्र भी पीले रंग के होने चाहिए, झूला भी पीले रंग का होना चाहिए, इस प्रकार का आयोजन करते हो लोग। सुगंध कौन से प्रकार का होना चाहिए वो भी, उसका भी आयोजन करते हैं हम लोग, करते क्या हमारे फेस्टिवल में, ये सुगंध कौन सा होना चाहिए, सब जगह कौन सा सुगंध छाया होना चाहिए, ऐसा नहीं करते, वी कांट प्लान लाइक दैट, इट्स नॉट पॉसिबल ओनली। लेकिन वृंदा देवी सब कुछ ऐसा भयंकर प्लानिंग करते रहते, और उसका हर वन में एक स्टोर हाउस है, और हर वन में उस स्टोर हाउस में क्या क्या नहीं है हम लोग कब यकीन नहीं कर सकते क्या क्या है उसके अंदर, ऐसा ऐसा स्टोर भरा हुआ है उसके अंदर, इतना माइन्यूट और डिटेल क्यों है, क्योंकि चेतना इतनी विकसित चेतना है ना, कॉन्शियसनेस इज सो डेवलप्ड कि उसके अंदर ये सारी सी विचार आ सकते हैं ना कि सुगंध भी ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था गोलोक वृंदावन में होती है, फुल्ली डेवलप्ड कॉन्शियसनेस, फुल्ली डेवलप्ड स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर एंड फुल्ली डेवलप्ड पीपल अराउंड यू, तो अनंत अनंत मात्रा की सेवाएं होती है। और उधर प्रेम के बिना कोई सेवा करता ही नहीं है, हर चीज प्रेम से करता है। जैसे अभी हिरण है, हिरण आपने राधा गोपीनाथ में हिरण को देखा है, गौर से देखा है उसको, अभी उसके आंखों में डाल आंखें देखो डाल के, और शास्त्र में भागवत पढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा कि वो हिरण जो होता है ना वो अपने आंखों से भगवान की आरती करता है, उसके पास दीपक नहीं है, उसके पास बाती भी नहीं है, उसके पास घंटी भी नहीं है, लेकिन केवल भगवान को निहारने से, अपने नेत्रों से और दृष्टि से भगवान की आरती उतारता है। उसका भगवान को देखना ही ऐसा है कि वो आरती के समान है। तो एक पुजारी यहाँ पर बहुत सोने के दीपक में आरती कर रहे हैं, उसको भगवान स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिरण की दृष्टि को भी स्वीकार कर रहे हैं आरती के रूप में। अब हिरण क्या करेगा, मैं ही कुछ नहीं कर सकता, हिरण क्या करेगा, ऐसा आपको लगेगा। वो हिरण वाल में कैसे होते हैं, वो हिरण ना हिरण राधा रानी और सब गोपियां जो है ना अपने शरीर को चंदन लगाती है, और वो चंदन अगुरु जो जितना सुगंधित द्रव्य है ना वो सब लगाती है अपने शरीर को, और फिर वो उधर भगवान के चरण कमल लेके ऐसे छाती पे लगा देते हैं, भगवान के चरण कमल लेकर छाती में ग्रहण करते हैं उसको और रोते हैं बहुत। तो वो भावना है ना उनकी, बहुत तीव्र भावना है ना उनकी, वो तीव्र भावना से वो जो श्रृंगार किया ना चंदन गुरु का वो पिघल जाता है और भगवान के तलवों को वो पिघला हुआ चंदन गुरु का स्पर्श होता है। फिर जब भगवान चरण छोड़ के जमीन पर रखते हैं और चलने लगते हैं तो वो जो पिघला हुआ चंदन गुरु है वो घास को लगता है जिस पर वो चल रहे हैं। सही है ना कि गलत है, लगे है ना, अभी गीला गीला पिघला हुआ श्रृंगार है वो पैर को लगा हुआ है और पैर पे आप जमीन पे चल रहे हैं घास पे, तो घास पे लगेगा कि नहीं। तो ये हिरण जाके वो घास खाते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं और फिर नेत्रों से भगवान की आरती उतारते हैं। अभी घास को सेवा है इसके अंदर, घास को सेवा है कि नहीं इसके अंदर, घास को भी सेवा है, हिरण को सेवा है इसके अंदर, गोपियों को सेवा है क्या, सबको सेवा है इसके अंदर, किसको सेवा नहीं, हर एक जीव को सेवा है। वो घास है ना गोलोक वृंदावन में, वो पता है कैसा होता है, वो हमारे तरह जीव है शांतरस वाला और वो घास बना हुआ है अपनी इच्छा से। तो उसका काम क्या है, उसकी सेवा क्या है कि जब भी भगवान चलेंगे तो मुझे ऐसा मुलायम बनना है कि उनको पैरों को आनंद मिलना चाहिए। तो अपनी बेस्ट कैपेसिटी से वो अपने आप को ऐसे बनाता है कि भगवान का पैर रखते ही उनको आनंद आएगा, यही काम है। और भगवान ऐसे भागवत में वर्णन आता है कि जब वो घास पे चलते हैं तो वो घास को भी प्रतिसाद देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, और वो घास को समझ में आता है कि मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आप वर्णन पढ़िए ना, वो भगवान अभी धेनुकासुर को मारने के लिए तालाब में प्रवेश कर रहे हैं, आप पढ़ो वो चैप्टर। तालाब पहुंचे नहीं, अब जाएंगे, अब आगे बलराम जी उसका वध करेंगे, उसके पहले बहुत सुंदर वर्णन आता है। सर भगवान जो है वो बलराम का गौरव कर रहे हैं और देखो देखो कैसे पेड़ झुके हुए हैं, आपको वंदन कर रहे हैं, पेड़ आपके ही आदर से वो झुक रहे हैं, आपको चरणों का स्पर्श करना चाहते हैं, ऐसे वंदन बहुत वर्णन कर रहे हैं। फिर वो समाप्त होता है, उसके बाद वो चल रहे हैं और ऐसा वर्णन आता है कि बहुत सारे पक्षी बोल रहे हैं और भगवान घास पे चल रहे हैं। तो ऐसे वर्णन आता है कि भगवान तरह तरह के पक्षी की आवाज निकाल रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम भी खेल रहे हैं वो भी खेल रहे हैं, हम भी मजा कर रहे हैं वो भी मजा कर रहे हैं, लेकिन भगवान हर एक पक्षी जो पुकार रहे हैं उनको उनको उनकी भाषा में जवाब दे रहे हैं। और आपको क्या लग रहा है, बच्चों को क्या लग रहा है, देखो कितना अच्छा कोयल का आवाज निकालते हैं भगवान, देखो हमारे कन्हैया कितने एक्सपर्ट है, कितना अच्छा तोते का आवाज निकालते हैं, कितने अच्छे कोयल का आवाज निकालते हैं, ऐसा हमको लग रहा है। लेकिन वो कोयल उनको पुकार रही है प्रेम से और ये उसी आवाज में उनको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये उनको और उनको मालूम है, इनको लग रहा है कि अच्छा आवाज निकालते हैं, लेकिन उनके हर एक जीव के साथ में उसका उनका आदान प्रदान हो रहा है और वो भी उनको ऐसे ही प्रेम से आदान प्रदान कर रहे हैं अपनी भाषा में, और घास से भी कर रहे हैं साथ साथ, जिसको पैर पे जिसको चल रहे हो, हर एक जीव के साथ में एक साथ में वो आदान प्रदान करते रहते हैं और हर एक जीव अपनी अपनी तरफ से उनको प्रेम का सेवा करते रहते हैं। तो कितने भी अनंत करोड़ अनंत अनंत खबजो अरजो अरबो दीव जीव होंगे तो क्या हुआ, सबके साथ भगवान का संबंध है और सबको सबको भगवान सेवा देते हैं और सबकी सेवा लेते हैं। तो आज हम लोग जो कुछ कर रहे हैं ना वो ऐसा एक फीबल इनसिग्निफिकेंट अटेम्प्ट है, आज जो कुछ हम लोग कर रहे हैं वो एक ऐसा एक तुच्छ एक प्रयत्न है हमारा, लेकिन जो हम करने जा रहे हैं ना आगे जाके वो बहुत महान है। आज के तुच्छ प्रयास से एक दिन हम लोग वो सूक्ष्म और दिव्य भगवान की सेवा कर सकेंगे, इसलिए करते रहना चाहिए विश्वास के साथ। ऐसा नहीं होता, बोरिंग होता वहां पर, यहाँ एडवेंचर है वहां पर बोरिंग है, तो सब लोग वहां से इधर आते, लेकिन आप लोग तो वहां जाने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग तो यहाँ वापस आ रहे हैं, तो आप लोग जाना ही नहीं, उधर इधर ही रहो, वो लोग भी वापस आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना। गौलोक में ऐसा वर्णन किया गया है कि आपको सब मिलेंगे, प्रभुपाद मिलेंगे, सब लोग मिलेंगे, लेकिन प्रभुपाद के शरीर में नहीं मिलेंगे आपको, जैसा आपने देखा इधर, लेकिन उनको देखते समझ आएंगे हमारे प्रभुपाद जी। अभी ये सब कैसे हो सकता है, आप जब जाएंगे गोलोक में तो आप इस शरीर में नहीं रहेंगे, लेकिन अगर मैं आपको मिलूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये वही है हमारे डिपार्टमेंट में थे पहले, क्योंकि वहां पर आत्मा की आत्मा से पहचान होती है। आज हम आपके शरीर को देखकर आपको पहचानते हैं कि ये मालती निर्मल का शरीर है, तो ये मालती निर्मल है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम जब भी जाते हैं ना तो वो आत्मा की पहचान होती है, टोटल डिफरेंट लाइफ है वहां पर। अभी तो हम लोग थियोरी जानते हैं, उसकी प्रैक्टिकल जानेंगे तो कैसा होगा। हरे कृष्णा। तो लोगों को वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का अनुभव हमको यहां देना है, मतलब क्या है, सबसे बड़ा स्पिरिचुअल वर्ल्ड का अनुभव क्या है, लविंग रिलेशनशिप्स। प्रेम तो है ही, लेकिन प्रेम जब होता है तो क्या होता है, मतलब वो रिश्ते में आना पड़ता है ना, प्रेम मतलब आप क्या कुछ कर रहे हैं ना प्रेम के लिए, तो लविंग रिलेशनशिप्स ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सार है, बाकी सब उसके आगे है, मतलब जो बहुत सुंदर है, बहुत रंगी बिरंगी है, बहुत सुगंधी है, बहुत सुंदर शरीर है, वो सब उसका विस्तार है पूरा, लेकिन सार कहेंगे ना तो प्रेम पूर्ण रिश्ते, और वो प्रेम पूर्ण रिश्तों के माध्यम से स्पिरिचुअल वर्ल्ड हम लोग यहाँ पर भी प्रकट कर सकते हैं। अगर आप निस्वार्थ प्रेम पूर्ण रिश्ते यहाँ पर भी एग्जिबिट किए ना, तो आप उस समय के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ही अनुभव कर रहे हो, और वो अनुभव से लोगों को हौसला भी दे रहे हो कि ऐसा भी दुनिया है जहाँ पर आप निरंतर ऐसे प्रेम भरे संबंधों का अनुभव कर सकते हो। हाँ, निस्वार्थ प्रेम पूर्ण संबंध, बिना किसी अपेक्षा से दूसरों के कल्याण के लिए काम करते रहना। आप लोग जो कर रहे हैं वो भी वैसा ही है, लेकिन केवल थोड़ा दायरे के बाहर जाके होना चाहिए, फिर वो पूरा लाभ देगा। दायरे में करते रहेंगे तो एक लाभ मिलेगा, लेकिन दायरे के बाहर जाएंगे तो बहुत ज्यादा लाभ कम समय में मिलेगा। दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के प्रेम से सेवा उनके कल्याण के लिए करते रहना, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का स्थाई भाव है। स्थाई भाव का मतलब क्या है, डिफॉल्ट सेटिंग। बाय डिफॉल्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब लोग ऐसे रहते हैं, बिना स्वार्थ के दूसरों के कल्याण के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। जब प्रभुपाद जी यहां पर आए, जब उन्होंने वो निस्वार्थ लोगों के कल्याण के लिए काम किया, तो लोगों को स्पिरिचुअल वर्ल्ड का अनुभव हुआ, इसलिए लोग डिवोटी बने। वो निस्वार्थ कल्याण के लिए काम करने के बाद उन्होंने लोगों को वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का अनुभव दिया, और हम लोग भी वो दे सकते हैं लोगों को, और हम लोग ले भी सकते हैं। तो स्पिरिचुअल केयर का काम ही यही है कि निस्वार्थ भाव से हम लोगों को प्रेम से सेवा करें, तो आपको भी वो प्रेम का अनुभव होगा वो करते समय, और लोगों को भी होगा, और इस दोनों माध्यम से भगवान के होने का और भगवान के धाम का विश्वास लोगों को पैदा हो जाएगा। ऐसा है, इसलिए हम लोगों ना थोड़ा सा छोटा संकीर्ण मन करके, स्वार्थी भाव से, लोभी भाव से क्या मिलेगा वो सब गणित करके, मैनिपुलेट करके सेवा नहीं करना चाहिए। सेवा दिल से करना चाहिए, और आप दिल से करेंगे ना आपके सारे स्वार्थ पूरे हो जाएंगे, क्या क्या आपके हित में है वो सब पूरा हो जाएगा। लेकिन आप वो हित के लिए काम करने जाओगे तो आपका हित पूरा नहीं होगा, इफ यू वर्क ओनली फॉर योर डिजायर मे बी योर डिजायर विल नॉट बी फुलफिल्ड बट इफ यू वर्क सेल्फलेसली देन ऑल योर डिजायर विल बी फुलफिल्ड. जैसे आप छाया के पीछे भागोगे तो छाया दूर भागेगी, शैडो शैडो, और आप शैडो के उल्टी दिशा में चलो शैडो आपके पीछे पीछे आएगी. इफ यू गो विद द शैडो देन शैडो विल रन अवे फ्रॉम यू, इफ यू गो अगेंस्ट शैडो शैडो विल फॉलो यू. अब पैसे के पीछे आप भागोगे तो पैसा आपके आगे भागती जाएगा, पैसे को छोड़ के आप चलते रहो पैसा पीछे पीछे आपके भाग के आएगा. आप फेम के लिए काम करो, फेम आपको नहीं मिलेगा जितना आपको चाहिए, लेकिन आप बिना फेम की इच्छा से बिना कीर्ति की इच्छा से काम करो, कीर्ति आपको नहीं चाहते हो आपके पीछे पीछे भाग के आएगी. ये प्रकृति का स्वभाव है. आप सिद्धि के लिए भागो आपको सिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन जब भक्त बनोगे ना आप तो सिद्धियां आपके पीछे हाथ जोड़ के पीछे पीछे भागेंगे आपके, लेकिन आप भी उसको देखेंगे नहीं मुड़के. मुक्ति मुक्ति भुक्ति और सिद्धि ये तीनों चीजें आपके पीछे भागेंगी अगर आप भक्त बनोगे तो. और आप मुक्ति या भुक्ति और या सिद्धि के पीछे भागोगे तो तीनों में से एक भी नहीं मिलेगा. उनका स्वभाव ही ऐसा है, जो उनको छोड़ के जाता है उसके पीछे वो भागते हैं, जो उनके पीछे भागता है उसको नहीं मिलते वो. और जो भगवान के पीछे भाग रहा है उसके पीछे दुनिया भागती है. मुक्ति भुक्ति सिद्धि बाकी सब लोग इधर के उधर के सब लोग भागते हैं, सब लोग उनके पीछे भागते हैं. और जो भगवान के पीछे भागते हैं भगवान उनके पीछे भागते हैं. हरे कृष्णा.